एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारे अस्तित्व के बिल्कुल बुनियादी सवालों से जुड़ी हैं, हमारे जीन, हमारा डीएनए और वे हमारी कहानी कैसे कहते हैं।
नमस्कार, और ये किताब है मैट रिडले की जीनोम, एक प्रजाति की आत्मकथा 23 अध्यायों में, मतलब जीनोम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पीशीज इन 23 चैप्टर्स। शीर्षक ही देखिए कितना दिलचस्प है ना, एक आत्मकथा हमारी पूरी प्रजाति की जो हमारे खून में हमारी कोशिकाओं में लिखी है।
बिल्कुल, और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हम रोज सुनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, वो डीएनए टेस्टिंग वगैरह की खबरें, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि ये जीन क्या बला है और हमारी जिंदगी पर इनका कितना और कैसा असर होता है?
ये किताब इसी समझ को बनाने में मदद करती है, और वो भी एक बेहद रोचक अंदाज में।
सही कहा, ये सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं है।
नहीं, ये इस बात से जुड़ी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी सेहत, हमारा स्वभाव, यहाँ तक कि समाज के तौर पर हमारे सामने जो नैतिक चुनौतियाँ हैं, ये उनसे भी जुड़ी हुई हैं।
तो एक तरह से ये किताब हमें हमारे अपने जेनेटिक कोड के जरिए इंसान होने के मायने समझने का एक नज़रिया देती है।
बिल्कुल, तो चलिए इस अनोखी आत्मकथा के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मैट रिडले हमें अपनी प्रजाति के बारे में क्या बताते हैं।
हाँ, शुरुआत लेखक से करते हैं। मैट रिडले, ये कोई आम विज्ञान लेखक नहीं है।
नहीं, उनके पास ऑक्सफोर्ड से जूलॉजी में डॉक्टरेट है और उन्होंने जानवरों के व्यवहार के विकास पर रिसर्च भी किया है, और साथ ही वो एक अनुभवी पत्रकार भी रहे हैं, मतलब द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े नामों के साथ काम किया है उन्होंने।
और शायद यही मेल उन्हें खास बनाता है,
क्यों, एक तरफ तो गहरी वैज्ञानिक समझ है
और दूसरी तरफ आम पाठक के लिए मुश्किल बातों को सरल और दिलचस्प बनाने की कला। उनकी दूसरी किताबें भी तो हैं, जैसे द रेड क्वीन।
हाँ, द रैशनल ऑप्टिमिस्ट, वो भी इसी वजह से काफी पसंद की गई। उनकी खासियत ही यही है कि वो विज्ञान को कहानी की तरह सुनाते हैं।
अच्छा,
और जीनोम के लिए तो नजरिया एकदम फिट बैठता है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक किस्सों, मानवीय उदाहरणों और कभी कभी थोड़ी मजाकिया उपमाओं से सजाते हैं।
हाँ, इससे जेनेटिक्स जैसा शायद थोड़ा सूखा लगने वाला विषय भी एकदम जीवंत हो उठता है।
बिल्कुल,
एक और जरूरी बात शायद उनके नजरिए के बारे में बतानी चाहिए, वो जेनेटिक नियतिवाद के सख्त खिलाफ हैं।
हाँ, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, मतलब वो इस विचार को नहीं मानते कि हमारे जीन ही हमारी किस्मत तय कर देते हैं, कि हम बस अपनी बायोलॉजी की कठपुतलियां हैं।
अच्छा,
वो मानते हैं कि जीन बेशक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। वे हमारे माहौल, हमारे अनुभवों, हमारे चुनावों के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हैं। ये समझना इस किताब का एक केंद्रीय बिंदु है एक तरह से।
तो अब आते हैं किताब पर, इसका मूल विचार क्या है? जैसा कि शीर्षक से ये जाहिर है, रिडले कहते हैं कि हमारा जीनोम यानी हमारे सभी जीन्स का पूरा सेट, वो सिर्फ शरीर बनाने का कोई टेक्निकल मैनुअल नहीं है।
नहीं, ये हमारी प्रजाति की 4 अरब साल पुरानी आत्मकथा है, डीएनए के अक्षरों में लिखी हुई।
4 अरब साल?
हाँ, और इसे पढ़ने का उनका तरीका भी अनोखा है। किताब में 23 अध्याय हैं और हर अध्याय हमारे 23 जोड़ी क्रोमोजोम में से एक को समर्पित है।
अच्छा, हर क्रोमोजोम के लिए एक चैप्टर।
हाँ, और हर चैप्टर में वो उस खास क्रोमोजोम पर मौजूद एक जीन या जेनेटिक सिद्धांत को पकड़ते हैं और उसे एक लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, मानव जीवन के किसी बड़े पहलू को समझने के लिए।
तो ये सफर कहाँ से कहाँ तक जाता है?
अरे, बहुत लंबा सफर है, जीवन की शुरुआत से लेकर बीमारियों जैसे हंटिंगटन रोग या सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनके जेनेटिक आधार तक, फिर हमारे व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में जीन की क्या भूमिका है, तनाव, याददाश्त, बुढ़ापा, और यहाँ तक कि वो गहरे दार्शनिक सवाल कि क्या हमारे पास फ्री विल है,
स्वतंत्र इच्छा। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, और ये उस पुरानी बहस को भी नया मोड़ देता है, नेचर वर्सेस नर्चर।
हाँ, प्रकृति बनाम पोषण, यानी हम जो कुछ भी हैं वो हमारे जीन की वजह से है या हमारे माहौल और परवरिश की वजह से।
रिडले कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है, ये बनाम का मामला ही नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
वो इसे कहते हैं प्रकृति द्वारा पोषण, नेचर वाया नर्चर, मतलब जीन अकेले कुछ नहीं करते, वे पर्यावरण के संकेतों से सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। और पर्यावरण का असर भी हमारे जीन्स के जरिए ही होता है, दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे कोई जटिल नृत्य चल रहा हो।
वाह, ये समझना शायद किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है।
हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो समझना चाहता है कि जेनेटिक्स की ये क्रांति हमारे लिए क्या मायने रखती है, और वो भी बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दावली के।
हाँ, रिडले से एक रोमांचक बौद्धिक जासूसी कहानी जैसा बना देते हैं।
बिल्कुल।
चलिए अब कुछ अध्यायों में झांक कर देखते हैं कि रिडले अपने तर्कों को कैसे बुनते हैं। शुरुआत करते हैं क्रोमोसोम 2 से, प्रजाति से।
हाँ, ये वाला बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक कमाल की कहानी है। पता चलता है कि हमारे पूर्वजों में कभी दो अलग क्रोमोसोम थे।
दो अलग?
हाँ, जो आज भी चिंपांजी और दूसरे वानरों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन किसी मोड़ पर इंसान के विकास के दौरान ये दोनों जुड़ गए और हमारा ये विशाल क्रोमोसोम 2 बना दिया।
सच में दो क्रोमोसोम जुड़ गए, ये सोचना ही कितना अजीब है,
है ना? और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जेनेटिक तब्दीली थी जिसने शायद हमें हमारे करीबी वानर रिश्तेदारों से अलग करने में एक अहम भूमिका निभाई।
तो ये हमारे जीनोम में दर्ज हमारे विकासवादी इतिहास का एक ठोस सबूत है।
जैसे किसी पुरानी किताब में दो पन्ने एक साथ चिपका दिए गए हों।
बिल्कुल वैसा ही।
अब एक बिल्कुल अलग स्वाद का अध्याय लेते हैं, क्रोमोसोम 4, भाग्य।
भाग्य मतलब किस्मत।
हाँ, यहाँ रिडले हंटिंगटन रोग का उदाहरण देते हैं। ये एक बहुत ही दुखद न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, और इसकी खासियत ये है कि ये लगभग पूरी तरह से एक ही जीन में खराबी के कारण होती है।
सिर्फ एक जीन?
हाँ, अगर किसी के पास वो खराब जीन है तो उसे वो बीमारी होगी ही, ये तय है, लगभग तय।
बाप रे, ये तो वाकई जेनेटिक नियतिवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरण लगता है। यहाँ तो जीन ही किस्मत लिख रहा है।
और फिर ये मुश्किल सवाल उठाता है, क्या किसी को ये जानना चाहिए कि उसकी किस्मत में ऐसी बीमारी लिखी है? अगर हाँ, तो कब और कैसे? इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है?
हाँ, ये तो बहुत भारी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। जेनेटिक्स की ताकत भी दिखती है और खतरा भी।
बिल्कुल, लेकिन रिडले हमें इस नियतिवादी सोच के साथ छोड़ते नहीं हैं। अगले ही प्रमुख उदाहरण पर आते हैं, जो क्रोमोसोम 5, पर्यावरण से जुड़ा है।
अच्छा, यहाँ क्या है?
यहाँ अस्थमा से जुड़े जीन्स की बात होती है। कई जीन्स हैं जो अस्थमा होने का खतरा बढ़ाते हैं, लेकिन क्या ये जीन अस्थमा पैदा करते हैं?
नहीं,
ये जीन सिर्फ एक प्रवृत्ति बनाते हैं, एक झुकाव। अस्थमा अक्सर तब होता है जब हमारा सामना पर्यावरण के कुछ खास कारकों से होता है, जैसे प्रदूषण, धूल मिट्टी, कुछ खास तरह की इन्फेक्शन।
तो यहाँ जीन और पर्यावरण मिलकर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये प्रकृति द्वारा पोषण का एकदम सटीक उदाहरण है। जैसे कहते ना, जीन बंदूक लोड कर सकते हैं, लेकिन ट्रिगर अक्सर पर्यावरण दबाता है।
वाह, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं, क्रोमोसोम 7, सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट।
हाँ, यहाँ FOXP2 जीन का जिक्र आता है। इसे कभी कभी भाषा जीन कह दिया जाता है, हालांकि ये थोड़ा सरलीकरण है।
भाषा जीन मतलब बोलने के लिए जीन?
हाँ, कुछ वैसा ही। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश परिवार का अध्ययन है जहाँ इस जीन में एक छोटा सा बदलाव होने से परिवार के कई सदस्यों को बोलने और भाषा समझने में गंभीर दिक्कतें थीं।
अच्छा,
इससे पता चलता है कि भाषा जैसी जटिल चीज, जिसे हम अक्सर पूरी तरह सीखा हुआ मानते हैं, उसकी जड़ें भी हमारी बायोलॉजी में कितनी गहरी हैं।
ये उस विचार को चुनौती देता है कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट, जिस पर अनुभव कुछ भी लिख सकता है।
सही कहा, हमारी कुछ क्षमताएं या कम से कम उनकी नींव वो जन्मजात होती हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। अब एक ऐसे अध्याय पर आते हैं जो हमें चेतावनी देता है, क्रोमोसोम 21, यूजेनिक्स।
हाँ, ये थोड़ा गंभीर विषय है। ये अध्याय डाउन सिंड्रोम पर केंद्रित है, जो क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त कॉपी होने के कारण होता है, लेकिन इसका मुख्य फोकस यूजेनिक्स के काले इतिहास पर है।
यूजेनिक्स? हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक आंदोलन था।
बिल्कुल, ये 20वीं सदी की शुरुआत में खासकर अमेरिका और यूरोप में फैला था। इसका मकसद था मानव नस्ल को बेहतर बनाना, वो भी चयनात्मक प्रजनन और यहाँ तक के जबरन नसबंदी के जरिए।
और ये माना जाता था कि सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी या अपराध, वो खराब जीन्स के कारण है।
हाँ, यही खतरनाक सोच थी। रिडले बहुत सख्ती से बताते हैं कि ये सोच जेनेटिक्स की भयानक गलतफहमी और विकृति पर आधारित थी। ये विज्ञान का दुरुपयोग था जिसे नस्लवाद और सामाजिक पूर्वाग्रहों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया।
यह अध्याय एक गंभीर चेतावनी है कि जेनेटिक ज्ञान कितना शक्तिशाली है और अगर इसे नैतिकता और मानवता के बिना इस्तेमाल किया जाए तो इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ रिडले के विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहे हैं।
हाँ, ये इतिहास हमें हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, अब अंत में एक दार्शनिक सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रोमोसोम 22, स्वतंत्र इच्छा,
फ्री विल। क्या हम सचमुच अपने फैसले खुद लेते हैं या हमारे जीन और हमारा दिमाग हमें एक तय रास्ते पर चलाते हैं?
रिडले का तर्क यहाँ बहुत सूक्ष्म है। वो मानते हैं कि हाँ, हमारे जीन हमारे दिमाग की वायरिंग करते हैं, हमारी प्रवृत्तियां तय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन
हमारा दिमाग इतना ज्यादा जटिल है, उसमें अरबों न्यूरॉन्स के इतने सारे कनेक्शंस हैं कि उससे चेतना, आत्म जागरूकता और विकल्प चुनने की क्षमता जैसी चीजें वो उभरती हैं।
तो ये सोचना कि जीन हमें कठपुतली बनाते हैं वो जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है।
हाँ, वो यही कहते हैं। शायद हमारी स्वतंत्र इच्छा की क्षमता भी हमारे विकास का ही एक हिस्सा है। अप्रत्याशित होने की क्षमता, नियमों को तोड़ने की क्षमता।
तो हम पूरी तरह आजाद शायद ना हो, लेकिन हम पूर्व निर्धारित भी नहीं है।
बिल्कुल, हमारी बायोलॉजी हमें प्रभावित करती है, नियंत्रित नहीं करती।
वाह, इन कुछ उदाहरणों से ही पता चलता है कि किताब कितने बड़े फलक पर फैली हुई है।
ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं, ये इतिहास, दर्शन, नैतिकता सब कुछ छूती है।
हाँ, सच में। और इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य विषय या संदेश हैं जो बार बार उभर कर आते हैं। हाँ, जैसे सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक तो यही है कि प्रकृति बनाम पोषण एक झूठा विभाजन है।
बिल्कुल, ये या तो ये या वो का मामला नहीं है। जैसा हमने अस्थमा के उदाहरण में देखा, ये हमेशा प्रकृति द्वारा पोषण होता है। जीन और पर्यावरण लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है।
नामुमकिन। दूसरा बड़ा संदेश है कि जेनेटिक नियतिवाद एक मिथक है, कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर।
हाँ, ये हंटिंगटन वाले उदाहरण के बावजूद।
हाँ, क्योंकि हंटिंगटन जैसे मामले बहुत कम है। ज्यादातर मामलों में हमारे जीन हमारी कहानी लिखते नहीं है, वे बस कुछ संभावित पटकथाएं सुझाते हैं। वे हमें कुछ चीजों की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन अंतिम दिशा अक्सर हमारे हाथ में होती है, हमारे चुनाव, हमारा माहौल।
तो ये ज्ञान हमें डराने के बजाय सशक्त बनाना चाहिए।
बिल्कुल, अपनी प्रवृत्तियों को जानना उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है।
तीसरा, ये विचार कि जीनोम एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। हमारे डीएनए में हमारी प्रजाति का अरबों साल का इतिहास दर्ज है।
हाँ, इसमें प्राचीन महामारियों के निशान हैं, हमारे पूर्वजों के प्रवास के रास्ते हैं और पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के साथ हमारा गहरा रिश्ता झलकता है।
और भारत जैसे देश में तो ये और भी स्पष्ट है, जहाँ इतनी ज्यादा आनुवंशिक विविधता है। ये हजारों सालों के प्रवास, मिश्रण और अलग अलग वातावरणीय चुनौतियों की जीती जागती कहानी है।
सही कहा। चौथा, यह किताब हमें विज्ञान की जटिलता और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। जीनोम कोई सरल मशीन नहीं है।
एक जीन एक बीमारी या एक जीन एक गुण वाला मॉडल ज्यादातर मामलों में गलत साबित होता है।
हाँ, हजारों जीन मिलकर जटिल तरीकों से काम करते हैं। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। ये हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से रोकता है
और वैज्ञानिक खोज के प्रति विनम्र बनाता है।
और पांचवा, जो सुजननी की वाले अध्याय से सीधे जुड़ता है, वो है आनुवंशिक ज्ञान की नैतिक अनिवार्यता।
हाँ, ये ज्ञान अभूतपूर्व शक्ति देता है, बीमारियों के इलाज से लेकर शायद मानव क्षमताओं को बढ़ाने तक।
लेकिन इसके साथ भारी जिम्मेदारी भी आती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस ज्ञान का उपयोग हमेशा समानता, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान के साथ हो। इतिहास की गलतियों को दोहराया न जाए।
ये सभी वाकई गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय हैं।
हाँ,
किताब में ऐसी कई पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। सीधे उद्धरण याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ केंद्रीय विचारों को उनके सार के रूप में देख सकते हैं।
हाँ, जैसे पहला और सबसे बुनियादी विचार, जीनोम हमारी प्रजाति की आत्मकथा है, डीएनए की भाषा में लिखी गई, जो 4 अरब साल पीछे जीवन की शुरुआत तक जाती है।
ये रूपक ही पूरी किताब की आत्मा है,
है ना? ये जेनेटिक्स को सिर्फ एक तकनीकी विषय से उठाकर एक मानवीय ऐतिहासिक कहानी बना देता है। हमें एहसास दिलाता है कि हम सब इस महागाथा का हिस्सा है।
और दूसरा, वो विचार जो प्रकृति पोषण की बहस को सुलझाता है। बहस प्रकृति बनाम पोषण की नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा पोषण की है।
जीन पर्यावरण के संकेतों से जागते हैं, वे मालिक नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले सेवक हैं।
ये पुरानी निरर्थक बहस को खत्म कर एक ज्यादा सटीक और उपयोगी समझ देता है। ये बताता है कि दोनों अविभाज्य हैं।
हाँ, और तीसरा वो दार्शनिक संदेश जो हमें हमारी स्वतंत्रता का एहसास कराता है। हम अपने जीन के गुलाम नहीं हैं।
अपनी सहज प्रवृत्तियों को समझना ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है।
ये हमें अपनी प्रकृति के साथ काम करने, उसे अनदेखा करने के बजाय उसे समझने और साधने की क्षमता देता है।
ये बताता है कि आत्मज्ञान, जिसमें हमारी जेनेटिक प्रवृत्तियों का ज्ञान भी शामिल है, हमें ज्यादा जागरूक और शायद ज्यादा स्वतंत्र बनाता है।
हाँ, ये विचार सच में हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचने का नया तरीका देते हैं।
तो अब असली सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इस ज्ञान का क्या करें?
इसका सबसे सीधा असर तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा आपने पहले भी कहा, आजकल जेनेटिक टेस्टिंग ज्यादा आम हो रही है।
हाँ,
अगर किसी को पता चलता है कि उसे डायबिटीज या हृदय रोग का औसत से ज्यादा जेनेटिक जोखिम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ले,
बल्कि ये एक चेतावनी है, एक अवसर है।
बिल्कुल, ये जानने के बाद शायद वो अपने जीवन शैली, खान पान, व्यायाम को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाए। ज्ञान यहाँ बचाव का हथियार बन सकता है।
जैसे रिडले बताते हैं, जीन प्रवृत्तियां देते हैं, उन प्रवृत्तियों को हकीकत बनने से रोकने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
सही, और ये परिवार नियोजन और बच्चों की परवरिश में भी मदद कर सकता है।
कैसे?
यह समझने में कि हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी सहज प्रतिभाएं और झुकाव हो सकते हैं। माता पिता बच्चे की इन जैविक प्रवृत्तियों का सम्मान कर सकते हैं, साथ ही ये भी समझ सकते हैं कि उन्हें सही माहौल और प्रोत्साहन देना कितना जरूरी है ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास कर सकें। ये सबको एक ही लाठी से हाँकने वाली सोच से बचाता है।
हाँ, ये बात तो सही है। एक और बात जो आजकल बहुत प्रासंगिक है, ये किताब हमें मीडिया में जेनेटिक से जुड़ी सनसनीखेज खबरों के प्रति थोड़ा संदेहवादी बनना सिखाती है।
हाँ, वो हेडलाइंस आती है ना, वैज्ञानिकों ने मोटापे का जीन खोजा या खुशी का जीन मिल गया।
हाँ।
रिडले की किताब पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि मामला इतना सरल नहीं होता। ज्यादातर लक्षण बहुत सारे जीन्स और पर्यावरणीय कारकों के जटिल मेल से तय होते हैं।
तो ऐसी खबरों पर तुरंत यकीन करने के बजाय सवाल पूछना जरूरी है।
बिल्कुल, और शायद सबसे गहरा असर इसका हमारी सहानुभूति और सामाजिक समझ पर पड़ सकता है।
सहानुभूति पर? कैसे? जब हम ये समझते हैं कि लोगों के व्यवहार, उनकी बीमारियों, उनकी क्षमताओं के पीछे जटिल जैविक और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं, तो शायद हम दूसरों के प्रति कम आलोचनात्मक और ज्यादा दयालु हो सकें।
अच्छा, हाँ।
ये समझने में मदद मिलती है कि कोई व्यक्ति जैसा है वैसा क्यों है। ये हमें सामाजिक समस्याओं को भी ज्यादा गहरे और मानवीय स्तर पर देखने में मदद कर सकता है।
तो अंत में इस पूरी गहन चर्चा से क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा जेनेटिक कोड कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक संभावनाओं से भरी कविता है जिसका अर्थ हमारे कर्मों और हमारे माहौल से तय होता है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, लेकिन हमें उड़ने की आज़ादी भी देता है।
और मेरे लिए ये किताब जेनेटिक ज्ञान के डर को कम करती है और उसे सशक्तिकरण का एक जरिया बनाती है। अपनी जैविक विरासत को समझना हमें खुद को बेहतर जानने में मदद करता है। ये हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही हमारी अद्भुत क्षमता और जटिलता का जश्न भी मनाता है।
हाँ, ये विज्ञान की विनम्रता और मानव होने की सुंदरता दोनों को एक साथ दिखाता है, और शायद ये हमें थोड़ा और जिम्मेदार बनने के लिए भी प्रेरित करता है, अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।